ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सुबह 11 बजे तक 24% से अधिक मतदान रिकॉर्ड किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि वोट देने के लिए उत्साही मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। केंद्र शासित प्रदेश के 6 जिलों में 26 विधानसभा क्षेत्रों के सभी 3,502 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। इस चरण में लगभग 25,78,000 मतदाता 239 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारू मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 18 सितंबर को पहले चरण में 61% से अधिक मतदान हुआ था। तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को 40 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से वोट डालने और लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं को बधाई दी। इस बीच 15 देशों के वरिष्ठ राजनयिकों का उच्चस्तरीय शिष्टमंडल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के निरीक्षण के लिए आज कश्मीर का दौरा कर रहा है। शिष्टमंडल में अमरीका, मैक्सिको, गयाना, दक्षिण कोरिया, सोमालिया, पनामा, सिंगापुर, नाइजीरिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, नार्वे, तंजानिया, रवांडा, अल्जीरिया और फिलीपींस के राजनयिक शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अधिकांश दूतावासों का प्रतिनिधित्व उपराजदूत और मिशन उपप्रमुख करते हैं, जबकि अन्य दूतावासों का मिनिस्टर काउंसलर और काउंसलर रैंक के राजनीतिक अधिकारी करते हैं। इधर हरियाणा विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार में तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोनीपत जिले के गोहना में जनसभा करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि हरियाणा की जनता ने भाजपा को जिताने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लोकतंत्र के प्रति जोश और उत्साह का माहौल है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा को जनता का समर्थन प्राप्त होगा। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। केंद्र सरकार की प्रमुख पहल मेक इन इंडिया को आज 10 साल पूरे हो गए हैं। इस अवधि के दौरान सरकार ने कई प्रमुख योजनाएं लागू की हैं। इन कार्यों से भारत के विनिर्माण परिदृश्य में क्रांति आई है और हमारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुई है। वैश्विक ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि भारत वर्ष 2030 तक सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित इस कंपनी के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में भारत की आय वृद्धि स्थिर हुई है। मजबूत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि और सकारात्मक निवेशक के कारण लाभ वृद्धि की गति 2030 तक स्थिर रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि महान राष्ट्रवादी विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय अवधारणा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गृहमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को महान देशभक्त, राजनीतिक और मानवता के प्रति समर्पित नेता बताया। श्री अमित शाह ने कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उनके सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनिश्चित कर रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ विकास पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पंडित दीनदयाल ने न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को नया आर्थिक दर्शन दिया है और राजनीति में शुचिता और प्रामाणिकता स्थापित की है। मकाऊ ओपन बैडमिंटन में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जौली की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने पहले दौर में जापान के अकारी सातो और माया तागुची की जोड़ी को हराया। भारतीय जोड़ी का मुकाबला कल ताइवान के ली ची चुन और तीन चुन सुन से होगा। मिक्स्ड डबल्स में एन सिक्की रेड्डी और बी सुमित रेड्डी की जोड़ी ने मलेशिया के हो लो यी लू और बिंग कुन की जोड़ी को पराजित किया। ऋतिका शिवानी और होन कपूर की जोड़ी थाईलैंड के रुत नापाक और जेनिका की जोड़ी से खेलेगी। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में चिराग सेन का सामना हांगकांग के एंगस एनजी कालोंग से होगा। विश्व के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत का मुकाबला इसराइल के दुबोवेंका दानिल से होगा। 17 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों की सैफ चैंपियनशिप फुटबॉल में भारत ने मालदीव को 3-0 से हरा दिया है। भूटान में इस जीत के साथ ही भारत 6 अंकों के साथ ग्रुप ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।